नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर चर्चा के लिए कल आपातकालीन बैठक बुलाई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। सरकार ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। निर्वाचन आयोग ने ईसीआई नेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे और अंडर 19 पुरुष क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में डकवर्थ लुइस नियम से दक्षिण अफ्रीका को 25 रन से हराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमरीकी हमले पर चर्चा के लिए कल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक परिषद के अस्थायी सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थायी सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र में वेनेजुएला के स्थायी मिशन ने सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजकर आपातकालीन सत्र का अनुरोध किया है और अमरीकी कार्रवाई की आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में उनके निर्देश पर सैन्य अभियान चलाया गया। फ्लोरिडा में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए कराकस में स्थित एक किलेबंद सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया।
Today, at my direction, the United States,
मेरे निर्देश पर अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं ने वेनेजुएला की राजधानी में एक असाधारण सैन्य अभियान चलाया। अमेरिकी सेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक ऐसी कार्रवाई थी जिसे लोगों ने द्वितीय युद्ध के बाद से नहीं देखा था। कराकस में सैन्य बलों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया ताकि निकोलस मादुरो को न्याय के कटघरे में लाया जा सके।
ट्रंप ने बताया कि जब तक वेनेजुएला की सत्ता सुरक्षित, उचित और न्याय संगत हाथों में नहीं आती तब तक अमेरिका वहां का शासन संभालेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई की तुलना ईरान के खिलाफ हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों से की जिनमें परमाणु ठिकानों पर हमले शामिल थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अब अमरीकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन पर न्यूयॉर्क में नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध मादक पदार्थों का एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो को एक तानाशाह बताते हुए वेनेजुएला के राजनीतिक और सैन्य नेताओं की चेतावनी दी कि अगर वे विरोध करते हैं तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला अब स्वतंत्र है और इस अभियान के बाद अमरीका सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र बन गया है। इस बीच वेनेजुएला के विपक्षी नेता नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने कहा है कि वेनेजुएला में आजादी का समय आ गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मचाडो ने कहा कि निकोलस मादुरो को वेनेजुएला वासियों और कई अन्य देशों के नागरिकों के खिलाफ किए गए जघन्य अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो ने बातचीत से समाधान में विफल रहने के कारण अमरीकी सरकार ने कानून लागू करके अपना वादा पूरा किया है। इस बीच अमेरिका की वेनेजुएला पर इस सैन्य कार्रवाई पर विश्व नेताओं ने निंदा की है। रूस, चीन, ईरान, ब्राजील और क्यूबा सहित कई देशों ने इसकी निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। विदेश मंत्रालय ने हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों से वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह जारी की है। वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है। दूतावास का ईमेल cons.caracas@mea.gov.in है और आपातकालीन फोन नंबर है +58412958428। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने ईसीआई नेट ऐप में सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस ऐप पर 10 जनवरी तक सुझाव दिए जा सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं को बेहतर सेवाएं और चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए यह डिजिटल मंच बनाया है। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोग के अनुसार ईसीआई नेट ऐप का परीक्षण, बेहतर मतदाता सेवाएं, मतदान प्रतिशत रुझानों की त्वरित उपलब्धता और मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचकांक कार्डों का प्रकाशन प्रदान करता है। इस ऐप का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आयोग ने कहा कि नागरिकों से प्राप्त सुझावों की जाँच की जाएगी और उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें शामिल किया जाएगा। ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म को इस महीने के अंत में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाना है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 नए आपराधिक कानून वर्ष 2029 तक सत्र न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2019 से संसदीय परामर्श समिति की 12 बैठकें की हैं। श्री शाह ने कहा कि देश में मोबाइल फोरेंसिक लैब की संख्या 1000 तक पहुंच गई है। अगले 5 वर्ष में इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने 50वीं बैठक के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति की शुरुआत की थी। ये निगरानी के साथ शासन सुधारों का मंच बन गया है। विशेष श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भुवनेश्वर डेलांगपुरी रेल लाइन परियोजना की जानकारी।
लूमडिंग सिलचर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, जो दक्षिणी असम को सेवा देने के साथ साथ त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम जैसे पहाड़ी राज्यों को जरूरी रेल संयोजकता प्रदान करती है। यह लाइन इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में काम करती है, जो अनाज, खाद, पेट्रोलियम उत्पाद, निर्माण सामग्री और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही में मदद करती है। लूमडिंग सिलचर गेज कन्वर्जन परियोजना को 1996-97 में मंजूरी दी गई थी और बाद में 2004 में इसे एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई थी। 25 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन रुकावटों का संज्ञान लेते हुए प्रगति तंत्र के तहत इसकी समीक्षा की। सुपर्णा साइकिया के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में निर्णायक कालखंड रहा है। इस वर्ष देश की प्रगति में कई नीतियों का उल्लेखनीय योगदान रहा और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। हमारी विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जब विश्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में एक आदर्श नेता के रूप में देखा।
वर्ष 2025 भारत के वैश्विक उत्थान में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में सामने आया। देश के भीतर मजबूत आर्थिक नेतृत्व और विदेशों में आत्मविश्वासी कूटनीति के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्थिर और विश्वसनीय नेता के रूप में उभरे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क लगाए, तब प्रधानमंत्री मोदी के नेशन फर्स्ट रुख ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब असमान व्यापार समझौतों या बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ नई नीति को स्पष्ट किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सिंधु जल संधि को निलंबित करते हुए यह संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। उन्हें कुल 29 वैश्विक सम्मान प्रदान किए गए, जिनमें बारबाडोस का ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, इथोपिया का ग्रेट ऑनर निशान और ओमान का ऑर्डर ऑफ ओमान शामिल है। और भूटान के राजा द्वारा हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत स्वागत जैसे क्षणों ने भारत के गहरे संबंधों को दर्शाया। दृष्टि के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कहा है कि इस महीने की 15 तारीख को होने वाली 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए कुल 15,931 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 29 नगर निगमों के 893 वार्डों में 2,869 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। उम्मीदवारों की जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिससे इस महीने की 15 तारीख को मतदान और अगले दिन मतगणना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल कल 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आंध्र प्रदेश पहुंचे। राष्ट्रपति गोखुल गुंटूर में आज 3रे विश्व तेलुगु सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये प्रतियोगिता 4 से 11 जनवरी तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। पुरुष और महिलाओं की लगभग 73 टीमें इसमें भाग लेंगी। और अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस नियम के अंतर्गत 25 रन से हरा दिया। ICC अंडर 19 विश्व कप इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी इस श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। वहीं विश्व टेबल टेनिस WTT यूथ कंटेंडर के अंडर 15 मिक्स्ड डबल्स में विवान दवे और नेशा रिवास्कर की जोड़ी ने गुजरात के वडोदरा में आदित्य दास और अंकोलिका चक्रवर्ती की जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह पक्की की।
और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कल तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 3 दिन तक शीतलहर का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और हिमालय के तराई क्षेत्रों, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कल तक और उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। आज सुबह 7 बजे AQI 298 दर्ज किया गया। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद लवलीन। वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने की खबरें सभी अखबारों की पहली खबर है। जनसत्ता के अनुसार दोनों पर न्यूयॉर्क में मादक पदार्थों की तस्करी का मुकदमा चलेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला पर ट्रंप के अटैक से हिला तेल का सिंहासन। दैनिक भास्कर की खास खबर है, भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर बुनियाद पर खड़ा है और ये साल अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साबित होगा। पत्र ने ऐसे 8 बड़े संकेत दिए हैं जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था क्यों और कैसे रफ्तार पकड़ेगी। अमर उजाला ने उत्तर भारत में जारी ठंड को प्रमुखता से देते हुए लिखा है, पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से मैदानों में हुई सर्दी, कई जगह तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा। पत्र ने केदारनाथ धाम में बिछी बर्फ की सफेद चादर का चित्र भी दिया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बर्फीली हवा से कांपी राष्ट्रीय राजधानी। कल माघ मेले में पौष पूर्णिमा के साथ संगम क्षेत्र में कल्पवास के शुभारंभ को दैनिक जागरण ने सचित्र देते हुए सुर्खी बनाई है, आस्था की ऊर्जा से संगम क्षेत्र आलोकित, लगी पुण्य की डुबकी। राजस्थान पत्रिका ने सुखद संकेत शीर्षक से लिखा है, बेटों की चाहत हुई पूरी, अब दुनिया को चाहिए बेटियां। पत्र आगे लिखता है, पिछले 25 सालों में 70 लाख बेटियों की बचाई गई जान। दैनिक भास्कर का अनुमान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल ज्यादा तेज, नियंत्रक और भरोसेमंद होगा। पत्र आगे लिखता है, AI मनगढ़ंत जवाब कम देगा, जिंदगी के हर काम को रीसेट करेगा। राजस्थान पत्रिका की खबर है, थाईलैंड और इंडोनेशिया के विद्वानों ने रामायण को बताया जीवन सूत्र, विदेशी बोले रामायण समाज शासन के लिए प्रासंगिक जीवन दर्शन।
धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर चर्चा के लिए कल आपातकालीन बैठक बुलाई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। सरकार ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला के सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। निर्वाचन आयोग ने ECI नेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। और अंडर 19 पुरुष क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में डकवर्थ लुईस नियम से दक्षिण अफ्रीका को 25 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।